تفسير. आयत नंबर 69 से 104 तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद बयान की गई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के उस दौर का किस्सा बयान हुआ है जबकि नबुवत से आपको सरफराज किया गया, फिर शिर्क और तौहीद के मसले पर आपकी अपने खानदान और अपनी कौम से जो कश्मकश शुरू हुई थी। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है आप इसका जिक्र पढ़ेंगे, फिर इसके बाद तौहीद परस्त और शिर्क करने वालों का जो है वो अंजाम बताया गया है। वतलु अलैहिम नबा इब्राहिम, और इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ। अब आप देखें कि यहां पर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है वो जिक्र किया गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अबुल अंबिया मुत्तकियों के इमाम अपनी जात में एक उम्मत थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में बहुत ही मोहब्बत के साथ और बहुत ही प्यार के साथ करते हैं और बताते हैं कि मैंने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया तो वो आजमाइशों में पूरा उतरा, यानी मैंने जिन जिन आजमाइशों में उसको आजमाया तो वो उन आजमाइशों में पूरा उतरा। तो आप देख लीजिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आजमाइशों में पूरा उतरे तो अल्लाह ताला ने उनको जो है वो आलमीन का जो है वो लीडर बना दिया, इमाम बना दिया। अब यहां पे भी कहा जा रहा है कि और इन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ, क्यों? इसलिए कि अहले मक्का इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना सरबरा समझते थे और वो ये दावा रखते थे कि अहले मक्का इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, बल्कि मुशरकीन अरब के अलावा यहूदी और ईसाई भी ये दावा करते थे कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। तो कहा कि इन्हें जरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाओ। इज़ क़ाल ले अबीही, जब कहा उसने अपने वालिद से व कौम ही और अपनी कौम से मा ताबुदून, कि ये तुम किसकी पूजा करते हो। यहाँ पे आप देखें तो माँ का लफ्ज आया है कि माँ ताबुदून, कि तुम किसकी इबादत करते हो। माँ, अब आप देखें कि इससे क्या बात पता चलती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है अपने वालिद को तौहीद की दावत दी और उसके साथ ही अपनी कौम को भी। वो क्या करते थे? वो बुतों की पूजा करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे जो सवाल पूछा, तो सवाल जो पूछा तो मकसद क्या था कि ये बेहकीकत चीजें जो हैं, ये जो फजूल चीजें हैं, ये कैसी चीजें हैं कि जिनकी तुम पूजा करते हो। इज़ क़ाल अली अबीही व कौमिही मा ताबुदून, ये क्या चीजें हैं कि जिनको तुम पूजते हो। मकसद ये था कि तुम बे मकसद चीजों की, फजूल चीजों की जो है वो पूजा कर रहे हो। पालू नाबुदू, उन्होंने जवाब दिया नाबुदू कि हम इबादत करते हैं, असनामन बुतों की। फनजल्लू लहा आकिफीन, फनजल्लू हम हमेशा कायम हैं, लहा इनके लिए आकिफीन पूजा करते हुए, इनकी सेवा में हमेशा से हम जो है वो लगे रहते हैं। जैसे आइन का फा जो है इसका मतलब होता है कि सबसे कटकर किसी चीज के लिए जो है वो जम जाना, जैसे एतिकाफ जो है ना वो भी इसी से है कि एतिकाफ में इंसान जो है वो सबसे कटकर जो है वो एक अल्लाह का जो है वो हो जाता है ना, सब कुछ छोड़ देता है। तो उन्होंने भी कहा कि हम जो हैं कि हम जो है वो बुतों की पूजा करते हैं और हम तो इन्हीं की सेवा जो है इसमें लगे हुए हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे असनाम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका रूट है स्वाद नून मीम, और असनाम इसकी जमा है चांदी पीतल या लकड़ी के खुद तराशे हुए बुत और मूर्तियां वगैरह, उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद ये कारोबार करता था, बनाता भी था बुतों को और बेचता भी था। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि असनाम जो है बनाए हुए और काबले इंतकाल और खरीद और फरोख्त बुत, यानी जो ऐसे बुत जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ट्रांसफर किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि हम बुतों की पूजा करते हैं, फनजल्लू फनजल्लू, और हम कायम हैं, हम हमेशा रहेंगे, लहा इन्हीं की आकिफीन यानी इतकाफ करते हुए जैसे इन्हीं की सेवा करते रहेंगे। काला हल यस्माउनकुम इज तदउन। अब आप देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदाज में दलाइल है, वो अपनी कौम पर हुज्जत कायम कर रहे हैं, उनकी बेहकीकती को वाजे करने के लिए उनसे पूछते हैं कि हल यस्माउनकुम, ये तुम्हारी बातों को सुनते हैं, यस्माउनकुम क्या ये तुम्हें सुनते हैं, इज तदउन जब तुम इन्हें पुकारते हो। पहली दलील कि ये इनको सुनाई देता है, तुम दुआएं करते हो फरियादे करते हो तो सुनते हैं ये। नंबर दो, और यनफाउनकुम और यदुर्रून, या ये तुम्हें नफा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी आखिर ये किस मर्ज की दवा है कि तुम इनकी परस्तिश करते हो, तुम्हारी आवाज सुनते हैं और तुम्हें कोई नफा पहुंचा सकते हैं, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। कालू, वो बोले बल वजदना आबा अना कजाले का यफलून, उन्होंने जवाब दिया नहीं बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही करते पाया है। तो कौम के लोगों ने कहा कि हमारी इबादत की वजह ये नहीं है कि ये हमारी दुआएं और फरियादे सुनते हैं और हमें नफा पहुंचा सकते हैं या इनके नुकसान से हमें डर लगता है तो हमने इनको पूजना शुरू कर दिया है। खुद ही उन्होंने इतराफ किया कि हम तो अपने बाप दादा की अंधी तकलीद कर रहे हैं, हमारे बाप दादा के जमाने से ऐसा ही हो रहा है कि लक्कड़ पत्थर पीतल और ये सारे जो बुत हैं ये नस्ल दर नस्ल पूजे जा रहे हैं और हम भी बस ये पूज रहे हैं। काला अफराइतुम मा कुंतुम ताबुदून, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या देखा तुमने जो हो तुम पूछते हो, कभी तुमने आंखें खोल कर भी उन चीजों को देखा जिनकी तुम बंदगी करते हो। अंतुम व आबाउकुमुल अकदमून, तुम भी व आबाउकुम और तुम्हारे बाप दादा भी, अल अकदमून अगले, वैसे तो अकदमून का लफ्ज काफ दाल मीम से है कदम, और अकदम वाहिद है अकदमून जमा है, तो जब आप कदम रखते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो अकदमून ज्यादा अगले यानी पहले लोग, के उन चीजों को देखा भी जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा करते हैं। फइन्नहुम अदुवुल्ली इल्ला रब्बल आलमीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि मैं तो जब गौर करता हूं तो मुझे तो ये नजर आता है कि फइन्नहुम पस बेशक ये अदुवुल्ली ये मेरे दुश्मन है, ये दुश्मन है मेरे इल्ला रब्बल आलमीन सिवाय रब्बुल आलमीन के। अब आप देखें क्यों कहा कि ये मेरे दुश्मन है, कि अगर मैंने इनकी पूजा की तो मेरी दुनिया भी चली जाएगी और मेरी आखिरत भी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है बजाय इसके के बाप दादा की अंधी तकलीद वो करते और ये जो असनाम थे इनकी पूजा करते, इन्होंने इसको नुकसान समझा और कहा कि इनको पूजना तो ऐसा है जैसे कि दुश्मन को पूजना। तो कहा कि अब आप देखें कि यहां पर बड़ा एक खास तबलीग का नुक्ता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अदुवुल्ला कुम कि ये तुम्हारे दुश्मन है, कहा अदुवुल्ली ये मेरे दुश्मन है, नहीं, अगर वो ये कहते हैं कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं तो फिर क्या होता है, एक झगड़ा पैदा हो जाता ना। लेकिन अब यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको ये बताना चाहा कि मैं तो इनकी बंदगी से कतई इज्तनाब करता हूं, जब मैं सोचता हूं तो मुझे यही महसूस होता है कि ये मेरे दुश्मन हैं, और वजूद एक रब्बुल आलमीन के मैं किसी की बंदगी नहीं करना चाहता। क्यों करूं मैं अल्लाह की बंदगी, अल्लाह जी खलक नीफा हुआ यह दीन। अब यहाँ पे वो दलाइल दे रहे हैं कि मैं अल्लाह की बंदगी इसलिए करता हूँ कि अल्लाह जी खलकनी, कि उसने मुझको पैदा किया, यानी वो खालिक और मैं उसकी मखलूक। का हुआ यह दीन, फिर पैदा करके छोड़ नहीं दिया बल्कि वो मेरी रहनुमाई करता है। यह दीन यानी मुझे उसने हदायत दी है, और इसकी वजह क्या है, वल्लजी हुआ युतइमुनी व यस्कीन, और वो मुझे खिलाता है। सीन काफिया यस्कीन, और वो मुझे खिलाता है। आप देख लें कि कैसे उसने मेरी रहनुमाई की, कि उसने मुझे जिंदगी गुजारने का तरीका दिया, और मेरी जो है वो जिस्मानी जरूरतों को भी पूरा करता है, मेरी नशोनुमा, मेरा खाना पीना, तो मेरी निगहदाश्त, हिफाजत, परवरिश, मेरी सारी चीजों का इंतजाम जो है वो उसके जिम्मे है। वाइजा मरे तू फहुआ यशफीन, और जब मैं बीमार हो जाता हूं तो वो मुझे शिफा देता है। कितनी खूबसूरत बात है ना, कि बीमार हो जाता हूं, मैं परेशान होता हूं, तो वो मुझे जो है शिफा देता है। तो असल बात क्या है कि खिलाने पिलाने और शिफा देने की जो बात है, ये क्या है, ये अल्लाह ही की तरफ जो है वो रुजू होती है ना। क्योंकि यानी जो दवा होती है उसमें शिफा भी तो अल्लाह ही रखता है ना, डॉक्टर के हाथ में शिफा भी अल्लाह ही रखता है। तो इसलिए जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है, बीमारी होती है, मुश्किल होती है, तो मेरा रब जो है वो मुझे शिफा देता है। अब आप देखें कि यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुनिया की जिंदगी में मादी और रूहानी जो है तमाम चीजों का जिक्र किया, और उसके साथ ही सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि ये बात बताई कि दुनिया से निकलने के बाद जब मैं अगली दुनिया में कदम रखूंगा तो भी मुझे अपने अल्लाह ही से उम्मीद है कि मेरा मामला सरासर मेरे अल्लाह के हाथ में है, मेरा अंजाम जो है वो सरासर मेरे अल्लाह के हाथ में है। कि जो ही मैं दुनिया से जो है जाऊंगा और मौत की आखिरी हिचकी के साथ मेरा यहाँ का मामला खत्म होगा, तो उसके बाद जो है फिर मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूंगा और मुझे जो है वो अमाल की जवाबदेही करनी होगी। तो कहा कि वल्लजी अतमाऊ, और वो जात जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ, अन यग़फिर ली खतीअती यौमद्दीन, जो रोजे जजा में मेरी खताएं जो है वो माफ कर देगा। तो ये हैं वजूहात जिसकी वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं वो बता रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला की बंदगी करता हूँ, अतात करता हूँ, क्योंकि वो मेरा खालिक है, वो मेरा हादी है, और वो मेरा राजिक है, रजाक है, और वो मुझे शिफा देने वाला है, और वो हई है, और वो मुझे जिंदगी और मौत देने वाला है, और फिर मुझे मैं उम्मीद रखता हूं कि रोजे जजा में वो मेरी खताओं को जो है वो माफ कर देगा। तो अब यहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं कहते हैं कि मैं अल्लाह ही से ये उम्मीद रखता हूं कि वो कयामत के दिन मेरी खताएं जो है वो माफ कर दें। तो इससे क्या बात पता चलती है कि मैं बुतों से नहीं ये उम्मीद रखता कि वो कोई सिफारिश कर देंगे, बल्कि अल्लाह ही फैसला करेगा, और मैं अल्लाह ही से जो है वो अपने गुनाहों की जो है वो माफी चाहता हूं। अब आयत नंबर 83 से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फिर दुआएं शुरू होती हैं। पहले ये सारे दलाइल हैं कि मैं अल्लाह को पूछता क्यों हूं, अल्लाह की बंदगी क्यों करता हूं। अब आगे उन्होंने दुआएं मांगी हैं, रब्बे हबली हुक्मा, कि ए मेरे रब मुझे हुक्म अता कर। हुक्म जो है इसके मानी क्या है, इसके मानी जो है वो हिकमत, कुव्वत-ए-फैसला, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दुआ मांगी थी कि अरिनल अशिया कमाहिया, कि अल्लाहुमा अरिनल अशिया कमाहिया, कि अल्लाह हमको इस काबिल बना कि मैं हर चीज को उस नजर से देख सकूं जैसी कि वो फिल वाकया है, मानी हर मामले में वैसी राय कायम करूं जैसी कि इसकी हकीकत के लिहाज से कायम होनी चाहिए। जैसे किसी चीज की मुझे असल हकीकत बता दे कि मैं उसके बारे में क्या राय कायम करूं। जैसे होता है ना, आप कहीं रिश्ता करने जाते हैं, आपको पता नहीं चलता वो लोग कैसे हैं, वो होते कुछ है, वो जाहिर कुछ करते हैं। आप कहीं बिजनेस करना चाहते हैं, आपको पता नहीं चलता कि मेरा ये जो पार्टनर है ये कैसा है, या ये आप कहीं घर किराए पर लेना चाहते हैं तो आप राय कायम नहीं कर पाते कि ये मालिक मकान कैसा होगा, या आप किराए पर देना चाहते हैं तो ये किराएदार कैसा होगा, है ना। तो ये जो है ना, रब्बे हबली हुक्मन, तो मानी है सही कुव्वत फैसला, मानी ये है कि मैं जिंदगी में तमाम मराहिल पर जो फैसले करूं तो उसमें अल्लाह मुझे तेरी रहनुमाई हासिल हो। तो ये उन्होंने जो है वो दुआ मांगी, रब्बे हबली हुक्मन, कि ए मेरे रब मुझे जो है वो कुव्वत फैसला अता कर। और ये दुआ जो है ना, हम सबको भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह तू हमें हिकमत दे दे, तू हमें जो है वो फैसला करने की जो है वो सही सलाहियत दे दे। क्योंकि बाज़ुकात जिंदगी में बहुत से मवाक़े ऐसे आते हैं कि इंसान को ये पता नहीं चलता कि कौन सा मेरे लिए फैसला जो है वो सही है। तो यहाँ पे मानी है कि बेनल इल्मी वल अमली, यानी इल्म और अमल के अंदर ज्यादा कमाल मुझे दे दे। दूसरी दुआ उन्होंने मांगी, व अलहिकनी बिस्वालिहीन, और मुझको स्वाहलों के साथ मिला, मुझे दुनिया में भी स्वाहले सोसाइटी दे और आखरत में भी मेरा हशर नेक लोगों के साथ कर। अब आप देखिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ जो है ये कितनी खूबसूरत दुआ है कि मेरा अंजाम जो है वो नेक लोगों के साथ हो। इससे क्या बात पता चलती है कि सोहबते सोहले की दुआ जो है ये पैगम्बरों ने भी की है ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी आप पढ़ चुकी है ना, फातिरस समावाती वल अर्द अंता वली फिर दुनिया वल आखिरा तवफ्फनी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन। और यहाँ पर जो है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी ये दुआ करते हैं। अब क्यों ये दुआ करते हैं? क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा बाप, मेरे खानदान वाले, मेरी कौम वाले ये मुशरिक हैं, और अब वो अपने बाप खानदान कौम के लोगों को छोड़ देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन बुरों की जगह मुझे अच्छों की सोहबत अता कर दुनिया में भी और आखिरत में भी। इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह वाले जो लोग होते हैं हमेशा वो अल्लाह ही वालों को अपना जो है वो दोस्त बनाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी नजरों में अच्छा वही होता है जो कि अल्लाह की बंदगी में आगे बढ़ने वाला होता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है। इसके बाद उन्होंने, अच्छा यहाँ पे आयत नंबर 83 में आप देखें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने भी क्या दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला, के एला मुझे रफीकिल आला की सोहबत चाहिए ना। तो हमें भी अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह तू हमें सोहबत सवाले अता कर, नेक लोगों की सोहबत अता कर। और नेक लोगों की सोहबत से जो है वो इंसान बहुत से अच्छे काम करता है, जैसे जो है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक हुज्जाम के लिए दुआ मांगा करते थे, और वो कहते हैं कि जब मैं हज के दौरान जो है उससे बाल कटवाने के लिए गया तो उसने कहा कि मैंने उसे उजरत तय करना चाही कि कितने पैसे लोगे, तो उसने कहा कि इबादत में उजरत नहीं तय करते। कहते हैं कि मैंने बाल कटवाने के लिए जब अपने सर के बाईं तरफ को आगे करना चाहा तो उसने कहा हजरत पहले दाईं तरफ करें। फिर कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था तो उसने कहा कि हजरत तकबीर पढ़ते जाए। फिर कहते हैं कि जब मैं वहां से उठकर चलने लगा तो उन्होंने कहा कि जैसे अब बाल आपके कट गए हैं, क्योंकि हज मुकम्मल होने पर हाजी फिर कटवाते हैं ना बाल, हलक करते हैं या तकसीर कसर करते हैं, तो कहा कि जाकर 2 रकत नफल पढ़ लेना। कहते हैं बड़ा हैरान हुआ कि एक हुजाम और इतनी ये अहम बातें जानता है, तो उसने बताया कि एक स्कॉलर एक बुजुर्ग को मैंने ऐसा ही करते देखा, और उसके बाद अब जो लोग मेरे पास आते हैं मैं सबको ये बात बताता हूँ। तो आप देखें कि सोबते सवाले से एक हुजाम एक नाई जो है वो भी सीख जाता है ना। तो जब सोबते सवाले मिलती है तो इंसान जो है वो अच्छे अमल करते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बड़े नेक लोगों की सोहबत में रहते थे, बहुत नेक लोगों की सोहबत में रहते थे, और ताबेइन तबा ताबेइन में से कोई था, तो उनके बारे में कहते थे कि कुछ लाख मुझे दिनार भी देने पड़े हैं और उसकी एक रात की अगर मुझे सोहबत मिल जाए ना तो मैं इतने लाख दिनार देकर भी उनकी वो सोहबत इख्तियार करने को तैयार हूँ, क्योंकि नेक लोगों की सोहबत से इंसान जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे फैसले करता है, बहुत नेकियों में आगे बढ़ता है। तो उन्होंने दूसरी ये दुआ की, उनकी तीसरी दुआ थी वजअली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन, और ये बड़ी अहम दुआ है, और बात के आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर। वजअली निशाना सिदकिन, सच्चा जिक्र, सच्ची नामवरी, फिल आखिरीन, बात के आने वालों में। इसके मानी ये हैं कि ए अल्लाह बात की नस्लें मुझे खैर के साथ याद करें, मैं दुनिया से ऐसे काम कर जाऊं कि नस्ले इंसानी मेरे मरने के बाद मेरा शुमार जो है वो जालिमों में ना करे, ऐसे लोगों में ना करे जो दुनिया को बिगाड़ कर चले गए थे, बल्कि मुझसे ऐसे काम हो जाएं कि जिनकी वो दौलत रहती दुनिया तक मेरी जिंदगी जो है वो रोशनी का मीनार बनी रहे, मुझे इंसानों के मोहसिनीन में शुमार किया जाए। अब आप देखें कि दुनिया की जिंदगी में इंसान जो काम करता है तो क्या होता है कि इंसान उसका खुद फायदा हासिल करता है, और दूसरी बात क्या होती है कि वो ऐसे काम करके जाता है जिससे दुनिया जो है वो फायदे हासिल करती है। तो अब यहां पर जो है जो बात कही जा रही है वो चाहते हैं कि बात के आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर। मुफस्सरीन कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे ऐसे पसंदीदा तरीके और उम्दा निशानियां अता कर जिसकी दूसरे लोग कयामत तक मेरी पैरवी करें, और मुझे जिक्र खैर और उम्दा सिफत के साथ याद रखें। अब आप देख लें कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल की कि यहूदी ईसाई मुशरिकीने मक्का सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, अपने आप को उनकी तरफ मंसूब करते हैं, अगरचे इनका तरीका जो है वो मिल्लत इब्राहिमी के खिलाफ है, कुफर और शिर्क पर है, मगर वो यही दावा करते हैं कि हम जो है मिल्लत इब्राहिमी पर हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी मिल्लत इब्राहिमी पर होने पर जो है वो फखर करती है। तो अब आप देखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कि आने वाली नस्लें जो है मुझे अच्छे लफ्जों में याद करें, इससे क्या बात पता चलती है कि दरअसल उन्होंने ये दुआ की थी कि मैं ऐसे नेक काम कर जाऊं, मुझे ऐसे नेक काम करने की तौफीक दे जो मेरी आखिरत का सामान पैदा कर दे, मुझे देखकर दूसरे लोगों को अमाले स्वाले की रगबत पैदा हो, मेरे बाद लोग अमाले स्वाले की पैरवी करें। यानी उनका मकसद कोई दुनिया हासिल करना नहीं था, बल्कि उनका मकसद क्या था, नेकियां करना था। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दुआ मांगी है ना कि अल्लाहुम्मा जलनी फी आईनी सगीरा व फी आयुनिन नासी कबीरा, कि अल्लाह मुझे अपनी निगाह में तो छोटा कर दे, हकीर बना दे, लेकिन लोगों की नजरों में मुझे बड़ा बना दे। बड़ा बनाने से मुराद क्या है कि लोग नेक अमाल में मेरी पैरवी करें। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जो शख्स वाकया में सवाले और नेक हो لوگوں کی نظروں میں نیک بننے کے لیے ریاکاری نہ کرے، تو اس کے لیے لوگوں کی طرف سے اگر تعریف ہو تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. تو یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا جو انہوں نے اپنے لیے مانگی. تو اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں نا کہ بد سے بدنام برا، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ کوئی ہوتا ہے، نیک بھی ہوتا ہے، تو لوگ اس کو جو ہے وہ برائی سے یاد کرنے لگتے ہیں. یہ جو یہاں پہ آپ دیکھیں لسان کا لفظ جو ہے، لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو نا. جب کسی کی زبان پر کوئی ہوتا ہے تو اس کو ایک شہرت ملتی ہے، ایک چرچا ہوتا ہے نا. اور یہاں پہ لسان کے ساتھ صدق کا لفظ ہے. معنی کیا ہے کہ جب میرا ذکر لوگ کریں، چرچا کریں، تو سچائی کے ساتھ کریں، یعنی اس کے اندر ایک پائیداری ہو. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی دعوت کے فروغ کے لیے دعا کی کہ آنے والی نسلوں میں ان کی دعوت پھیلے اور اس کو ایک پائیداری نصیب ہو. بنی اسرائیل میں جتنے رسول اور نبی آئے سب انہی کی دعوت لے کر آئے، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ایک عالمگیر اور زندہ اور جاوید دعوت بنایا. اور خود وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ چوتھی دعا کی کہ وجعلنی من ورثت جنت النعیم، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر. اب اپنے لیے جنت کی جو ہے وہ دعا کی ہے، اور کیسی؟ کہ جنت نعیم کی، ایسی جنت جو کہ اللہ کی نعمتوں سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، تو مجھے اس نعمتوں بھری جنت کا وارث بنا دے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پہ انسان جو ہے وہ دنیا کی وراثت کے لیے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، لیکن انہیں جو تھی وہ جنت نعیم کی وراثت کی فکر تھی نا. تو دنیا میں بھی اللہ نے ان کو لسانہ صدقن دیا. آپ دیکھ لیں ہم ہر نماز میں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، کما بارکت علی ابراہیم، تو ہم ان کا ذکر جو ہے وہ ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں. تو دنیا میں بھی ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی نام ہم کتنا رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، کتنی محبت کے ساتھ رکھتے ہیں. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان کا کردار بھی عطا کرے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، تو ان کو جنت کی وراثت کی فکر تھی. واغفر لی ابی، اور بخش دے میرے باپ کو، انہ کانا من الضالین، کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. اب یہاں پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا بھی کی. یہ جو دعا انہوں نے مانگی ہے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے مانگی کہ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگوں گا. جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے. بلا شبہ ابراہیم نرم دل اور بردبار تھے. یہ آپ سورت توبہ آیت نمبر 114 میں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ بھی اسی وعدے کے تحت کہتے ہیں اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. لیکن ہم لوگ جو ہے اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یعنی والدین مسلمان ہیں اور ان سے دنیا کی زندگی میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو والدین کے لیے دعا کرنا دل سوزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ والدین کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں. بلا تخزنی یوم یوبسون، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یعنی معنی کیا تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میدان حشر میں جب سارے لوگ جمع ہوں گے तो इब्राहिम का बाप अगर सजा पा रहा हो और इब्राहिम खड़ा अपने बाप को देख रहा और उसको सजा मिल रही हो, तो ये इब्राहिम के लिए बड़ी रुसवाई की बात होगी। तो अल्लाह तो मेरे बाप को जो है वो बख्श देना। फिर आयत नंबर जो 88 है, 88, इसके बारे में मुफस्सरीन कहते हैं कि या तो ये अल्लाह का कॉल है या फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के कॉल का हिस्सा है कि यौम ला यनफाउ मालूम वला बनून, जिस दिन ना कोई माल फायदा देगा और ना ही औलाद फायदा देगी। तो मानी क्या है कि कयामत का दिन जो है वो बड़ा ही सख्त दिन होगा, क्योंकि आमतौर पर दुनिया में जब मुश्किल होती है तो इंसान माल से काम चलाता है या फिर औलाद मुश्किल वक्त में इंसान के काम आती है, लेकिन वहां पे ना माल फायदा देगी और ना ही जो है वो औलाद फायदा देगी। तो क्या चीज फायदा देगी? इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, बजुज उसके कोई शख्स कल्बे सलीम लिए हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर हो। तो क्या चीज फायदा देगी? इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, कि जिस शख्स के पास कल्बे सलीम होगा। तो कल्बे सलीम किसे कहते हैं? सीन लाम मीम इसका रूट है, इसकी जमा है जैसे सलमा और साम से डसा हुआ, सख्त जख्मी करीबुल मौत को कहते हैं सलीम, क्योंकि जो करीबुल मौत कैसे हो जाता है जब सांप डस लेता है, जब कोई सांप डस लेता है तो इंसान जो है वो करीबुल मौत हो जाता है। क्यों? उस वक्त इंसान बिल्कुल मरने के करीब होता है ना। तो कल्बिन सलीम सांप से डसा हुआ, सख्त जख्मी, और इसी से लोग कहते हैं कि आफतों से महफूज, यानी ऐसा दिल जो शिर्क और निफाक की हर अलाई से बिल्कुल पाक और महफूज दिल हो, जिस दिल में किसी और की हिस्सेदारी या नफाक की बीमारी ना हो। क्योंकि जैसे जब इंसान करीबुल मौत होता है तो क्या करता है? तौबा इस्तग़फार करता है, माफी मांगता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है। तो सलीम सलामती वाला, दुरुस्त सही सालिम दिल, जाहिरी और बातनी आफतों से पाक और महफूज दिल, तड़पने वाला दिल जिसमें शिर्क ना हो, जिसमें सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो। तो उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, उस दिन जन्नत परहेजगारों के करीब लाई जाएगी। बड़ी खूबसूरत बात है, ये नहीं कहा कि नेक लोग जो हैं वो जन्नत के करीब जाएंगे, बल्कि नेकोकारों की ये तकरीम है, इज्जत की तरफ इशारा है कि जन्नत उनके करीब लाई जाएगी। उजलिफत इजलाफ करीब लाना, जे जा लामफा नजदीक होना और अजलफा नजदीक करना, तो जन्नत जो है मुत्तकीन के करीब की जाएगी। मुत्तकी कौन थे? जिन्होंने अल्लाह के डर से जिंदगी गुजारी, अल्लाह की हुदूद की पासदारी करते रहे। दुनिया में जिंदगी गुजारते वक्त हर वक्त फिक्रमंद रहे कि कहीं हमसे अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए, धड़कते दिल के साथ, और जो है वो जबान को तकवा की लगाम दी और कदम जो थे वो भी अल्लाह से डरते हुए उठाए, मुंह से बोलते थे तो भी अल्लाह से डरते हुए, जबान आंखों को गस्से बसर और अपने पूरे जिस्म पर अल्लाह की हुदूद और अल्लाह के अहकामात को नाफिज किया डरते डरते। वह उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, और उस दिन जन्नत परहेजगारों के करीब लाई जाएगी और नेक बख्तों के जन्नत करीब कर दी जाएगी। तो क्या चीज इंसान के काम आएगी? इंसान के नेक अमाल और उसका तकवा काम आएगा। वह बुर्रिज़तिल जहीमु लिल गावीन, और दोजख जो है, जो जहन्नुम है, वो खोल कर लिलगावीन के सामने कर दी जाएगी। लिलगावीन बहके हुए लोगों के सामने जहन्नुम को खोल कर पेश किया जाएगा। वह बुर्रिज़त, बा रा ज़ा, इसके मानी होते हैं, बा रा ज़ा के मानी होते हैं फिजा या खुली जगह में चले जाना, अल बराज खुली जगह में सामने आना, और वह बुर्रिज़तिल जहीम, यानी जैसे जहन्नुम जो है छुपाई हुई है ना अल्लाह ताला ने, लेकिन उस दिन अल्लाह ताला उसका पर्दा हटा देंगे और नंगी आंख से, खुली आंख से लोग उसको देख सकेंगे। वबुर्रिज़त अल-जहीम, और देख सकेंगे जहन्नुम को। लिल गावीन गैन वो, या अगवा से है, अगवा बहके वे लोग। गैया दोज़ख का एक नाम भी है। वकील लहुम, और उनसे कहा जाएगा, ऐनमा कुंतुम ताबुदून, अब कहाँ है वो लोग जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत किया करते थे। यानी अब तुम्हारे वो माबूद कहाँ है, अब तुम्हारे वो बुत कहाँ है जो तो जिनको तुम पूजा करते थे। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। हल यन सुरू नकुम औ यन तसिरून, हल यन सुरू नकुम, क्या वो तुम्हारी जो है कुछ मदद करेंगे। यन सुरू नकुम, नून स्वाद रा जो है इसके मानी होते हैं नसरा, मदद करना, और यन सुरू नकुम, तो क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। औ यन तसेरून, या इंतकाम ले सकते हैं। वैसे तो नून स्वाद रा का मतलब मदद करना होता है ना, लेकिन इंतसार, इंतसार जो है इसके मानी है इंतकाम लेना, अपनी मदाफियत करना। औ यन तसेरून, क्या वो बदला ले सकते हैं। फकुब के बूफी हा, बस वो औंधे मुंह इसमें डाल दिए जाएंगे। काफ बा, इसका रूट वर्ड रुबाई भी है और से हर्फी भी है। काफ बा भी हो सकता है, और काफ बा बा, किसी को मुंह के बल गिराना। कब कब, तकरारे लफ्जी के मानी, तकरार है ना लफ्जों की, तो ये मानी में शिद्दत पैदा करती है। लुड़खा कर औंधे मुंह गड़े में गिरा देना, ये है इसके माने। तो उस दिन उन्हें जो है वो ऊपर तले धकेल दिया जाएगा। फकूब किबू, फिर वो लोग जो हैं वो औंधे मुंह लुढ़काकर गड़े में गिरा दिए जाएंगे। फकूब किबू फीहा, फिर वो ऊपर तले धकेल दिए जाएंगे जहन्नुम में। वलगावून, वलगावून, ये बहके वे लोग। गावून कौन है, गुमराह। गैन वो या इसका रूट है। वल जुनूदु इबलीसा अजमाउन, और जुनूदु लश्कर, इबलीसा इबलीस के, अजमाउन सब के सब, और इबलीस के लश्कर सब के सब, यानी इबलीस उसके लश्कर और ये वलगाबून बहके हुए लोग सब के सब जो है ऊपर तले जहन्नुम में धकेल दिए जाएंगे। कालू वहुम फीहा यख्तसिमून, पर कहा उन्होंने, और वो इसमें झगड़े करेंगे, वहां ये सब आपस में झगड़े कर रहे होंगे, और ये बहके हुए लोग अपने माबूदों से कहेंगे, ताल्लाही अल्लाह की कसम, इन कुन्ना लफी दलाल मुबीन, हम तो सरी गुमराही में मुब्तिला थे। यानी उस दिन जो है वो इस बात का इकरार करेंगे कि हम लोग जो थे वो सरी गुमराही में थे। इज नुसवी कुम बिरब्बिल आलमीन, जब हम बराबर ठहराते थे। नुसवी कुम सीन वो या, बराबर ठहराना, मसावी, यानी जब हम अपने माबूदों को बराबर ठहरा रहे थे। रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के साथ, यानी हम अब तुमको रब्बुल आलमीन की बराबरी का दर्जा दे रहे थे। वमा अदल्लना इल्लल मुजरिमून, पर हम मुजरिम लोग ही थे, और वो मुजरिम लोग ही थे जिन्होंने हमको इस गुमराह में डाला। वमा अदल्लना, और नहीं गुमराह किया हमको, इल्लल मुजरिमून, मगर मुजरिमों ने, तो मुजरिमों ने हमें गुमराही में मुब्तिला कर दिया। वमा लना मिन शाफीन, आज हमारा कोई सिफारशी नहीं है। वला सदीकिन हमीम, और ना ही हमारा कोई जिगरी दोस्त है। हा मीम मीम, ये सख्त गर्म पानी को कहते हैं, और इसी तरह जो है वो हुम्मा, ये बुखार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बुखार के अंदर भी जो है वो एक गर्मी होती है, एक शिद्दत होती है। तो यहाँ पे सदीक दोस्त, सिद्क यानी जिगरी गहरा, और हमीमिन जिगरी दोस्त। क्या आज हमारा कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जो हमारे हाल पर कुढ़े और हमें इस हाल से छुटकारा दिला सके। फलो अन्ना लना कर्रतन फनकूना मिनल मोमिनीन, काश हमें एक दफा फिर मौका मिल जाए। फलो अन्ना लना कर्रतन, काफ रा, और इसका मतलब है बार, काश के एक बार हम दुनिया में जाएं। फनकूना मिनल मोमिनीन, और हम जो है वो मोमिनीन में शामिल हो जाएं। जैसे सूरत अल फुरकान आयत 28 में भी आपने पढ़ा ना, या वही लता लई तनी लम अतखिज फुलानन खलीला। और जो है आपने पढ़ा कि इंसान कहेगा कि अल्लाह ताला बस हमें एक दफा दुनिया में भेज दे, तो देख फिर हम अल्लाह की कैसी अताअत करते हैं। तो उस दिन जो है मुजरिम जो है वो अपने लीडरों का मातम करेंगे, पैरोकार अपने लीडरों का मातम करेंगे, अपनी बदबख्ती पर मातम करेंगे कि इन्होंने हमें गुमराह कर दिया, ना ये मिलते और ना ही हम ये बुरा काम करते। आज हमारा कोई हमायती नहीं, कोई मददगार नहीं। तो ये जो आयात हैं ये इबरत देती हैं और ये बताती हैं कि अबाओ अजदाद, पीयर प्रेशर, दोस्ती, लीडर, रहनुमा, उनकी अंधी तकलीद पर जीने की बजाय आंखें खोलनी चाहिए और कायनात में बिखरी हुई अल्लाह की निशानियों के जरिए और कुरान मजीद के जरिए जो है वो हदायत का सफर तय करना चाहिए। क्योंकि कयामत के दिन किसी के लिए ये उजर नफामंद नहीं होगा कि उसको दूसरों ने गुमराह किया। हर शख्स को अपने अमाल का बोझ जो है वो खुद ही उठाना पड़ेगा। फिर आप देख लीजिए कि फिर आयाते तरजीह हैं, आयत नंबर 103 और 104, इन्ना फी ज़ालिका लआया, यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है। फमा काना अक्सरहुम मोमिनीन, मगर इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। वा इन्ना रब्बका लहुल अजीज रहीम, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाकये में इबरत की निशानियां हैं। नंबर एक कि मुशरिकीन अरब, बिलखुसूस कुरैश जो थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निस्बत का दावा करते थे कि हम उनके दीन पर हैं। लेकिन अजीब बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो शिर्क के दुश्मन थे और दावते तौहीद तौहीद के अलमबरदार, और ए अहले मक्का शिर्क करते हुए तुम्हें तुम्हारी उम्र गुजर गई और तुम जो है अब रसूल की दावत पर ईमान नहीं लाते। और दूसरी बात जो पता चलती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन आपकी जो दावत और आपका जो काम और आपका जो नाम है आज भी जिंदा है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जो नेक लोग हैं होते हैं उनकी नेकी और उनकी जो अच्छी बातें हैं अल्लाह उनको जिंदा रखता है, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। लेकिन जो बद लोग हैं, जो नाफरमान हैं, बड़ी बड़ी कौमें ही क्यों ना हो, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी थी, तो ईमान न लाने के नतीजे में वो भी अजाब का शिकार हो गई। तो ए अहले मक्का तुम इबरत हासिल करो। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 105 से लेकर 140 तक, बल्कि 105 से लेकर 122 तक नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया है कि उन्होंने दावत दी, उनकी कौम ने झुठलाया और उसके नतीजे में उनकी कौम पर अजाब आया। आयत नंबर 105 से लेकर 122 तक, कज़बत कौमों नूह निल मुरसलीन, कौम नूह ने रसूलों को झुठलाया। तो कोई कौम जो है जब एक रसूल को झुठलाती है तो उसके माने क्या है, वो है उसने तमाम रसूलों को झुठलाया। इस काला लहुम अखूहुम नूहुन अला तत्तकून, याद करो वक्त जबकि उनके भाई नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था, अला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं हो। फत्तकुल्लाह व अतीउन, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात इख्तियार करो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है इन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। इनकी कौम जो थी वो शिर्क में मुब्तिला थी। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, और मैं तुमसे इस काम पर कोई उजरत नहीं मांगता, इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मा है। फत्तकुल्लाह व अतीउन, बस तुम अल्लाह से डरो और बेखटके मेरी अतात करो। तो आप देख लीजिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी कौम को तौहीद की दावत देते हैं, और उसके बाद जो हैं वो अपने रसूले अमीन होने का जो है तारुफ करवाते हैं कि मैं जो हूं एक अमीन आदमी हूं, क्योंकि मैं एक बेगरज आदमी हूं, मेरी कोई मकसद नहीं है, मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं हूं। तो तुम क्या करो कि तुम जो है वो मेरी अतात करो, और बगैर किसी खौफ के अतात करो, क्योंकि दावत के बदले में लोगों से किसी उजरत का मुतालबा ना करना, ये बजाते खुद जो है दाई की सच्चाई की दलील होती है। कालू, कौम के लोग बोले, अनोमिनु लका वत्ता बा कल अर्जलून, उन्होंने जवाब दिया कि हम तुझ पर ईमान ले आए, हालांकि तेरी पैरवी जो है वो रजील तरीन लोगों ने इख्तियार की है। वत्ता बा का, और तहकीक तेरी पैरवी की है, वत्ता बा का और तेरी पैरवी की है, अल अर्जलून रजील लोगों ने, रा जाल लाम रूट है, अर्जल वाहिद है, अर्जलून जमा है, और रा जाल लाम जो है हर चीज के नाकिस और घटिया हिस्से को कहते हैं। कौम के लोगों ने कहा कि जो हमारी कौम के अंदर घटिया, कमजोर, गरीब, गुलाम किस्म के लोग हैं, उन्होंने आपकी पैरवी इख्तियार की है। फाला, फरमाया, वमा इल्मी बिमा कानू या अमलून। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं क्या जानू कि इनके अमल कैसे हैं, वमा इल्मी, मेरे इल्म में नहीं है, बिमा कानू या अमलून, कि वो कैसे अमल कर रहे हैं। इन हिसाबहुम इल्ला अला रब्बी लो तशऊरून, इनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मा है, काश तुम कुछ शऊर से काम लो। वमा अना बिकारिदिन, और नहीं हूं मैं धुतकारने वाला, और मैं जो हूं निकाल देने वाला नहीं हूं। तो रा दाल इसका रूट है, किसी को हकीर और जलील समझकर दूर कर देना, हटा देना, निकाल देना, हांक देना। कहा कि मैं इनको जो है वो धक्के देकर निकालने वाला नहीं हूं। तुम ये समझते हो कि ये कमजोर लोग हैं, और तुम समझते हो कि मालो दौलत जो है यही शराफत की जो है वो दलील है। तो ये जो गरीब लोग हैं लेकिन ये ईमान लाने वाले हैं, तो मैं इन ईमान लाने वालों को धक्के देकर निकालने वाला तो नहीं हूं। वमा अना बेकार दिल मोमिनीन, मेरा ये काम नहीं है कि जो ईमान लाए उनको मैं धक्के देकर धुतकार दूं। इन अना इल्ला नजीर मुबीन, मैं तो बस एक साफ साफ मुतनब्बे करने वाला हूं। अब यहां पर जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपना तारुफ करवा रहे हैं कि मैं तो एक नजीर मुबीन हूं, मेरा काम है लोगों को डराना और वाजे तौर पर जो है वो मुतनब्बे करना। पालू, कौम के लोगों ने कहा, ल इल्लम तंतही या नूहू लतकूनन्ना मिनल मरजूमीन, ए नू अगर तू बाज ना आया, ल इल्लम तंतही यानी अगर तू ना रुका दावत देने से, अगर तुम बाज ना आए ए नू लतकूनन्ना, तो तू जरूर बजरूर हो जाएगा, मिनल मरजूमीन संसार किए जाने वालों में से। मरजूमीन ये सब मफूल है, अल मरजूम वाहिद है और अल मरजूमीन जमा है। दूर से पत्थर किंकर मारना और लानत और फिटकार पड़ती रहे, इसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। मुफस्सरीन कहते हैं कि या तो ये कि उन्होंने इस बात की धमकी दी कि तुम्हें पत्थर मार मार कर हिलाक कर दिया जाएगा, और या फिर ये कि हर तरफ से गालियों की तुम पर बौछार की जाएगी, जहां जाओगे धुतकारे और फिटकारे जाओगे। तो दोनों इसके मानी होते हैं। काला रब्बे इन्ना कौमी कज़्ज़बून, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरे रब मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया है। फ़फ़्तह बेनी व बेनहुम फ़तहुं व नज्जनी व मम्मा मिनल मुमिनीन, अब मेरे और इनके दरमियान दो टोक फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं इनको निजात दे दे। अब यहां पर जो है उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि फैसला कर दे कि हक पर कौन है और बातिल कौन है, बल्कि कहा कि फैसले को नाफिस भी कर दे, कि बातिल परस्तों को तबाह कर दे और हक परस्त जो है उनको बचा ले, यानी मुझे और जो मोमिन लोग हैं उनको तू जो है वो बचा ले। जब नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए और जब उन्होंने देखा कि अब कोई शख्स ईमान लाने वाला नहीं है, तो उन्होंने ये दुआ मांगी। ये सूरत नूह आयत नंबर 27 में आप देखेंगे कि कब उन्होंने ये दुआ मांगी, जब वो मायूस हो गए। फंजैनाहू वमम्माहू फिल फुल्किल मशहून, आखिरकार हमने उसको और इसके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में बचा लिया। फअंजैनाहू वमम्माहू फिल फुल्किल मशहून, आखिरकार हमने उसको और उसके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में बचा लिया। कहते हैं कि जिन लोगों को कश्ती में सवार किया गया वो 80 लोग थे, जिनमें से 40 मर्द और 40 औरतें थीं। तो नूह अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और अल्लाह ताला ने ईमान लाने वालों को एक भरी हुई कश्ती में बचाया। अलफुल्किल मशहून, अलफुल्क इस्म जिन्स है, कश्ती के लिए इस्तेमाल होता है, वाह जमा मुजक्कर मोनस, और अल मशहून इसका रूट है शीन हा नून, और इसके मानी होते हैं सवार और सामान से कश्ती का भर देना। तो एक भरी हुई कश्ती में इन्हें जो है वो बचाया। जैसे कश्ती में सामान लादा जाता है, भरा जाता है ना, तो अल्लाह ताला ने जो है एक भरी हुई कश्ती में इनको लदवा कर जो है फिर महफूज कर लिया, बचा लिया। तुम अगरकना बोदल बाकीन, और इसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। बाकीन बाकाफिया इसका रूट है। इन्ना फिजा लिकल आया वमा काना अक्सर मोमिनीन व इन्ना रब्बा का लहुअल अजीज रहीम, यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी है। देख ले कि ये जो है ये भी आयाते तरजीह हैं, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करने के बाद जो है फिर अल्लाह ताला ने जिन लोगों ने झुठलाया तो उनका अंजाम जो है वो उसका जिक्र किया है। तो ये इस तरह से जो है वो तीन कौमों का जिक्र आपने पढ़ा, और तीन दफा आयाते तरजीह, और पहली दफा जो है वो अहले मक्का को समझाने के लिए आई थी, तो इस दफा इस तरह चार दफा आयाते तरजीह आ चुकी हैं। फिर इसके बाद अल्लाह ताला कौम आद का जिक्र करते हैं, और इसके बाद अल्लाह ताला कौम आद का जिक्र करते हैं जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हूद अलैहि सलाम को भेजा था। कौमे नूह के बाद इन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की, इन्होंने बड़ी बड़ी उम्रें पाई, लंबा कद, और इनके जिस्म बड़े कवी थे, बड़ी ही मशहूर और उरूज वाली कौम थी। जिस्मानी लिहाज से जो है वो बड़े मजबूत थे, अपने दौर में ऐसी बेनजीर कौम थी कि इनके टक्कर की कोई दूसरी कौम नहीं थी। तमद्दुन इनका बड़ा शानदार, ऊंचे ऊंचे सतूनों वाली बुलंद और बाला इमारतें ये बनाते थे, और मादी तरक्की और जिस्मानी जोर आवरी ने इनको बड़ा सख्त मुतकब्बिर कर दिया था, और मजहबी हैसियत से ये अल्लाह ताला की हस्ती के मुनकर नहीं थे बल्कि शिर्क में मुब्तिला थे। इनके बारे में आप कुरान में पढ़ चुकी हैं ना, जैसे सूरत अल फजर में अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद, फिर सूरत अल फजर की आयत नंबर 8 अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, तो इन्हीं का जिक्र है कि कज़्ज़बत आद व निल मुरसलीन, आद ने रसूलों को झुठलाया। इज़ क़ाला लहुम अखूहुम हूदुन अला तत्तकून, याद करो जबकि इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा था कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए एक ईमानदार रसूल हूँ, फत्तकुल्लाह व अतीउन, बस तुम अल्लाह की अतात करो और मेरी पैरवी इख्तियार करो। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को शिर्क छोड़कर तौहीद की दावत दी और उसके साथ जो है वो अपनी अतात की तरफ बुलाया। नमा असअलकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और कहा कि मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं, मेरा अजर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। अतबनूना बिकुल्ली रीइन आयतन ताबसून, अतबनूना बानून या इसका रूट है कि क्या तुम बना लेते हो, क्या तुम तामीर करते हो, बिकुल्ली रीइन वा या आयन इसका रूट है और इसके मानी है ऐसी जमीन जो रबवा से ऊंची हो और सख्त हो। रा या आयन ऐसी जमीन जो रबवा से ऊंची हो और सख्त हो। रा या आयन के मानी होते हैं बढ़ना, ज्यादा होना, किसी का बढ़ना ज्यादा होना। ऐसी बुलंद जमीन को भी कहते हैं जो दूर से नजर आए। तो इसके मानी क्या है कि बुलंद टीला ऐसा मकान जो मुर्तफा पर हो, ऊंचा हो और दूर से नजर आए। तो आ तबनूना कि क्या तुम बना लेते हो, बिकुल्ले रीन हर ऊंची जगह पर, हर ऊंचे मकाम पर, आयतन निशानी, ताबसून तुम अबस काम करते हो या हासिल काम करते हो। अबस ऐन बा सा जो है इसके मानी होते हैं कि लहासिल फजूल, कि तुम हर ऊंचे मकाम पर एक यादगार इमारत बना डालते हो, वतत्तखिज़ूना और तुम बनाते हो, मसानिया महल। मसानिया जो है इसका रूट स्वाद नून ऐन है, सनतकारी तामीर के लिए आता है, और मसाने मसना तुन वाहिद है और मसाने उसकी जमा है, मसना उन भी वाहिद हो सकता है, और यहाँ पे ये जमा है जरफे मकान के तौर पर आया है। मसानिया महल्लात ऊंचे मकान, ऊंचे महल कले, तत्तखिज़ूना मसानिया और तुम बड़े बड़े महल तामीर करते हो, लअल्लकुम तख़लुदून, गोया तुम्हें हमेशा यहाँ पे रहना है। तो एक तो ऊंचे मकान महल बनाते थे, ऊंची जगह पर बनाते थे, कुव्वत वक्त दौलत का ज़िया करते थे, और समझते क्या थे, मकसद क्या था, फख्र करते थे ना कि ऊंचे ऊंचे घर और महल बनाए हैं, और समझते ये थे कि हमेशा दुनिया में रहना है। वाइजा बतश तुम जब्बारीन, और जब तुम किसी को पकड़ते हो, बतश तुम पकड़ते हो, जब्बारीन जब्बार बनकर। बा तो शीन जो है इसके मानी है कोई चीज जबरदस्ती ले लेना, पकड़ लेना, किसी की सख्त गिरफ्त करना, ऐसी गिरफ्त जिसमें रहम ना हो। तो तुम जो है किसी पर जब हाथ डालते हो तो जब्बार बनकर डालते हो। तो अब आप देखें कि एक तरफ इनका इनकी मादी तरक्की, जिस्मानी जोर आवरी और इनके ऊंचे ऊंचे